नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन नाटरी के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। यह जिमी सोनी और रॉब गुडमैन की लिखी क्लॉड शैनन की जीवनी है, जो आधुनिक डिजिटल संचार के सबसे प्रभावशाली वैज्ञानिकों में गिने जाते हैं। पुस्तक शैनन के बचपन, मिशिगन में शिक्षा, MIT और बेल लैब्स के काम तथा उनके निजी प्रयोगों को एक साथ रखती है। इसका केंद्रीय उद्देश्य केवल किसी महान आविष्कारक का जीवन सुनाना नहीं, बल्कि यह दिखाना है कि सूचना को मापने योग्य इकाइयों में समझने का विचार कैसे पैदा हुआ। शैनन के काम ने डिजिटल सर्किटों के लिए बूलियन बीजगणित के उपयोग को स्पष्ट किया और बाद में सूचना सिद्धांत की नींव रखी। लेखक कठिन गणित को पूरी तरह छोड़ते नहीं है, लेकिन उसे संचार, संकेत, शोर और संपीड़न के सहज उदाहरणों के सहारे समझाते हैं। साथ ही पुस्तक शैनन की जुगलबाजी, यांत्रिक खिलौनों और अप्रत्याशित समस्याओं में रुचि को उनके बौद्धिक स्वभाव के हिस्से के रूप में देखती है। यह विज्ञान के इतिहास, तकनीक और रचनात्मक शोध की जीवनी पर पड़ताल है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, बूलियन बीजगणित से डिजिटल सर्किटों की भाषा पुस्तक शैनन के आरंभिक निर्णायक योगदान को उनके MIT के शोध के माध्यम से रखती है। शैनन ने दिखाया कि जॉर्ज बूल के तर्कशास्त्रीय नियमों को विद्युत रिले और स्विचिंग सर्किटों पर लागू किया जा सकता है। इसका महत्व इस बात में था कि जटिल सर्किटों को केवल अनुभव और जोड़ तोड़ से बनाने के बजाय उन्हें प्रतीकों और नियमों के सहारे व्यवस्थित ढंग से डिजाइन किया जा सकता था। सत्य और असत्य अथवा चालू और बंद जैसी द्विआधारी अवस्थाएं गणना और नियंत्रण के लिए एक साझा आधार बन गईं। पुस्तक इस उपलब्धि को बाद के कंप्यूटरों की पूरी कहानी का अकेला कारण नहीं बताती, पर यह स्पष्ट करती है कि डिजिटल डिजाइन के लिए एक बुनियादी वैचारिक पुल यहीं बना। जीवनी का उपयोगी पक्ष यह है कि यह शोध को उसके संस्थागत परिवेश से जोड़ती है। MIT में इंजीनियरिंग की समस्याएं, मार्गदर्शकों का प्रभाव और शैनन की गणितीय क्षमता एक साथ काम करते दिखते हैं। इससे उस लोकप्रिय धारणा को संतुलन मिलता है कि बड़े वैज्ञानिक विचार हमेशा किसी एकांत प्रतिभा के अचानक मिले कौतुक होते हैं। शैनन की मौलिकता वास्तविक थी, लेकिन वह ठोस तकनीकी जरूरतों और कठोर प्रशिक्षण के संपर्क में विकसित हुई। पाठक समझ पाता है कि अमूर्त गणित तब विशेष रूप से शक्तिशाली बनती है जब वह किसी व्यावहारिक तंत्र की संरचना को सरल और जांचने योग्य बना दे। दूसरा, सूचना सिद्धांत, बिट, शोर और संचार की सीमा। पुस्तक का वैचारिक केंद्र शैनन का 1948 का शोध पत्र अ मैथमेटिकल थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है। इसके माध्यम से शैनन ने संदेश के अर्थ से अलग होकर उसके प्रेषण की समस्या को परिभाषित किया। प्रश्न यह था कि किसी माध्यम में कितनी सूचना भरोसेमंद ढंग से भेजी जा सकती है, संदेश को कितनी कुशलता से संपीड़ित किया जा सकता है और शोर के बावजूद त्रुटियों को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। पुस्तक बिट को सूचना की मूल द्विआधारी इकाई के रूप में समझाती है, लेकिन उसका महत्वपूर्ण बिंदु केवल बिट की परिभाषा नहीं है। शैनन ने अनिश्चितता, संदेशों की संभाव्यता और माध्यम की क्षमता के बीच गणितीय संबंध बनाया। इसी से यह समझ उभरती है कि दोहराव हर बार फिजूल नहीं होता, क्योंकि कुछ अतिरिक्त त्रुटि सुधार में सहायक हो सकता है। लेखक भाषा की आवृत्तियों और संचार प्रणालियों के उदाहरणों से विषय को सुलभ बनाते हैं। वे यह भी जोड़ते हैं कि इस सिद्धांत ने इंटरनेट, डिजिटल भंडारण, दूर संचार और अन्य तकनीकों के लिए आधारभूत ढांचा उपलब्ध कराया। फिर भी यह सिद्धांत संदेशों के अर्थ, भावनाओं या सामाजिक संदर्भ का सिद्धांत नहीं है। यह सीमा पुस्तक के व्यापक महत्व को घटाती नहीं, बल्कि उसके असाधारण योगदान को अधिक सटीक रूप से समझने में मदद करती है। तीसरा, बेल लैब्स और युद्धकाल में शोध की संस्थागत परिस्थितियां। शैनन की उपलब्धियों को समझने के लिए पुस्तक बेल लैब्स और युद्धकालीन वैज्ञानिक वातावरण को महत्वपूर्ण संदर्भ मानती है। बेल लैब्स में संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और गणित की व्यावहारिक समस्याएं उच्च स्तर के सैद्धांतिक काम से जुड़ी हुई थी। ऐसी जगहों पर शोधकर्ता केवल किसी विषय के विशेषज्ञ नहीं रहते, बल्कि अलग क्षेत्रों के प्रश्नों और उपकरणों से लगातार सामना करते हैं। शैनन के लिए यह वातावरण विशेष रूप से अनुकूल था, क्योंकि वे तर्क, इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार के बीच संबंध बनाने में सक्षम थे। पुस्तक उनके समकालीन वैज्ञानिकों और व्यापक बौद्धिक नेटवर्क का उल्लेख करके यह रेखांकित करती है कि आधुनिक आविष्कार अक्सर सहयोग, संसाधनों और संस्थागत स्वतंत्रता से बनते हैं। युद्धकालीन कार्य ने सुरक्षित संचार, संकेतों और गणना जैसी समस्याओं को तत्काल महत्व दिया। यह दबाव केवल बाधा नहीं था, उसने ऐसे प्रश्न भी दिए जिनके दूरगामी परिणाम निकले। इस प्रसंग का विश्लेषण जीवनी को महान व्यक्ति की सरल प्रशस्ति बनने से रोकता है। शैनन की प्रतिभा केंद्रीय थी, पर उसे विकसित होने के लिए प्रयोगशालाएं, चुनौतीपूर्ण कार्य और असाधारण सहकर्मी भी मिले। तकनीक के इतिहास में यह एक आवश्यक सबक है। विचारों का मूल्य केवल उनकी मौलिकता से तय नहीं होता, बल्कि इस बात से भी तय होता है कि उन्हें जांचने, लागू करने और साझा करने वाली संस्थाएं मौजूद हैं या नहीं। चौथा, खेल, जुगलबाजी और प्रयोग को ज्ञान की विधि मानने का प्रश्न शीर्षक में आया खेल शैनन के निजी स्वभाव और उनकी प्रयोगशीलता की ओर संकेत करता है। पुस्तक जुगलबाजी, यूनिसाइकिल, शतरंज की मशीनों, थ्रोबैक नामक रोमन अंक कंप्यूटर और अन्य यांत्रिक परियोजनाओं के माध्यम से दिखाती है कि शैनन को वस्तुओं, नियमों और गतियों के साथ खेलकर सोचना पसंद था। इन प्रसंगों का मूल्य केवल विचित्रता नहीं है। वे बताते हैं कि शैनन अमूर्त प्रश्नों को अक्सर बनाकर, मापकर और बदलकर समझते थे। जुगलबाजी में भी गति, पैटर्न और पुनरावृत्ति जैसी समस्याएं हैं, इसलिए वह उनके लिए मनोरंजन और विश्लेषण दोनों हो सकती थी। लेखक इस प्रवृत्ति को उनकी जिज्ञासा और स्वतंत्र सोच से जोड़ते हैं, फिर भी पुस्तक के इस तर्क को सावधानी से पढ़ना उपयोगी है। कुछ समीक्षकों ने ठीक ही कहा है कि शैनन की सबसे निर्णायक उपलब्धियां उनके आरंभिक, गंभीर और संस्थागत शोधकाल में आईं, इसलिए खेल को प्रतिभा का पर्याप्त कारण मानना अतिशयोक्ति होगा। अधिक संतुलित निष्कर्ष यह है कि शैनन की खेलप्रियता ने उनके व्यक्तित्व को समझने की खिड़की दी, जबकि उनकी वैज्ञानिक सफलता कठोर गणित, तकनीकी समस्याओं और अनुशासित काम से भी बनी। पुस्तक की शक्ति इसी तनाव को सामने लाने में है। वह रचनात्मकता को न तो केवल मेहनत का परिणाम बनाती है, न केवल मुक्त खिलंदड़े बनगा। अंत में, डिजिटल युग की आधारशिला और मानवीय संचार की शेष जटिलता, पुस्तक शैनन की विरासत को आज की डिजिटल दुनिया से जोड़ती है। लेकिन उसका सबसे उपयोगी पाठ यह है कि आधारभूत सिद्धांत और मानवीय अनुभव एक ही चीज नहीं है। सूचना सिद्धांत ने संचार को संकेत, बिट, क्षमता और शोर की समस्याओं में बदलकर तकनीकी प्रगति के लिए अत्यंत शक्तिशाली भाषा दी। इसी तरह की सोच डिजिटल नेटवर्क, मोबाइल संचार और डेटा भंडारण की विश्वसनीयता में दिखाई देती है। पर किसी संदेश को सफलतापूर्वक भेज देना यह सुनिश्चित नहीं करता कि उसका अर्थ सही समझा गया, वह विश्वसनीय है या उसका सामाजिक परिणाम अच्छा होगा। भावनाएं, संदर्भ, शक्ति संबंध और भ्रम संचार के वे आयाम हैं जिन्हें केवल चैनल क्षमता की गणना से हल नहीं किया जा सकता। यह अंतर आज विशेष रूप से प्रासंगिक है, जब तेज प्रसारण और विशाल डेटा पहुंच के बावजूद गलत सूचना तथा भरोसे की समस्याएं बनी रहती है। पुस्तक सीधे समकालीन डिजिटल नैतिकता का विस्तृत सिद्धांत नहीं देती, फिर भी शैनन की अवधारणाओं की सीमा को पहचानने का अवसर देती है। इस दृष्टि से जीवनी दौरा काम करती है। वह तकनीकी आधारों के प्रति सम्मान जगाती है और साथ ही यह याद दिलाती है कि इंजीनियरिंग की सफलता को मानवीय समझ, जिम्मेदारी और सामाजिक विवेक का विकल्प नहीं मानना चाहिए। निष्कर्ष में माइंड एट प्ले उन पाठकों के लिए उपयुक्त है जो कंप्यूटर, संचार, गणित या इंटरनेट के इतिहास में रुचि रखते हैं, लेकिन अत्यधिक तकनीकी पाठ्यपुस्तक नहीं पढ़ना चाहते। विज्ञान के विद्यार्थी और तकनीकी पेशेवर इसमें अपने क्षेत्र की बौद्धिक जड़ों का स्पष्ट परिचय पाएंगे। सामान्य पाठक के लिए इसका लाभ यह है कि यह रोजमर्रा की डिजिटल सुविधाओं के पीछे मौजूद एक मूल विचार को समझने योग्य बनाती है। विशेषकर बूलियन तर्क, बिट, संपीड़न और शोर जैसे विचारों को जीवन कथा के संदर्भ में पढ़ना उन्हें कम डरावना बनाता है। जीवनी में रुचि रखने वालों के लिए शैनन का शांत, निजी और असाधारण रूप से जिज्ञासु व्यक्तित्व आकर्षक है। हालांकि उनका जीवन पारंपरिक नाटकीय जीवनी जैसा नहीं है, यही पुस्तक की चुनौती और विशेषता दोनों है। यह किसी नायक को केवल व्यक्तिगत संघर्षों के माध्यम से नहीं गढ़ती, बल्कि विचारों, प्रयोगशालाओं, सहयोगियों और तकनीकी समस्याओं के परस्पर संबंध से उसका चित्र बनाती है। समान श्रेणी की वैज्ञानिक जीवनियों की तुलना में इसकी अलग पहचान सुलभ तकनीकी व्याख्या और शैनन की विलक्षण निजी रुचियों के संतुलित संयोजन में है। पाठक को यह भी ध्यान रखना चाहिए कि खेलप्रियता को उनकी सारी उपलब्धियों का सरल कारण मानना पर्याप्त नहीं होगा। फिर भी पुस्तक यह प्रभावी ढंग से दिखाती है कि कठोर तर्क और खुली जिज्ञासा एक ही मन में साथ रह सकते हैं। परिणामस्वरूप यह डिजिटल युग की उत्पत्ति, वैज्ञानिक कार्य की परिस्थितियों और संचार की सीमाओं पर विचार करने के लिए उपयोगी पुस्तक है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं रॉब गुडमैन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।